أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
تعالى جزاك الله خير. شاء الله تعالى
تابو الحج کا ریویو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم ٹیسٹ پہ ڈسکس کر لیں انشاءاللہ. اور ٹیسٹ میں نے بے حد آسان بنایا تھا اور میرے خیال میں تو آپ لوگوں کے لیول سے بہت نیچے تھا. یعنی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جو سمجھ اور لیول اور جتنے میں آپ لوگوں سے کوسچن کرتی ہوں وہ اس سے زیادہ ہارڈر ہوتے ہیں جتنے کے ٹیسٹ میں آپ کو دیے گئے. اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ لوگوں کے اوپر تلے ٹیسٹ آ رہے تھے, تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ تھوڑے بھی پریشان ہوں. دوسرے یہ کہ کافی, لیکن مجھے کچھ لوگوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے فل مارکس آئیں گے لیکن نہیں آئے. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جن کا میں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا انہوں نے کیا اور ان کے فل مارکس آئے بہت سارے لوگوں کے. لیکن اس کے برعکس ایسے بھی ہیں جن کے مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پورے مارکس والے اسٹوڈینٹس ہیں, مگر کیا ہوا مجھے نہیں پتا. زیادہ جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ لگتا ہے کہ صحیح سے کوسچن نہیں پڑا یا بس اس طرح سے لاپرواہی میں دے دیا یا کیا ہوا مجھے نہیں سمجھ آئی. کیونکہ کوسچنز تو دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں جو ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان سے جو کہ دوسرے آپ ٹیسٹ دیتے ہیں. دوسرے ٹیسٹ میں میرے لیے بہت آسان ہے یہ لکھنا کہ قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, فار ایگزامپل ایک ایک کوسچن لکھنا. لیکن جب ملٹیپل چوائس کوسچن بنانے ہوتے ہیں تو آپ کو آنسرز بھی خود دینے ہوتے ہیں اور ایسے دینے ہوتے ہیں جو صحیح آنسر سے کلوز ٹو ہوں. ایسے نہیں کہ ایک آسمان پہ ہے اور ایک زمین پہ ہے تو پھر تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا پھر تو میں نہیں جواب دے دیا. تو وہ کلوز ہوں گے آف کورس, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آنسرز بہت کلوز تھے تو اس لیے سمجھ نہیں آئی. تو جس کو بہت اچھا آتا ہوگا وہی اس قابل ہوگا کہ وہ یہ بتا سکے کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے میں ایسا کبھی بھی ملٹیپل چوائس نہیں دوں گی کہ جس میں آپ کو بالکل بچوں والا ہی, پھر تو نہ پوچھنے والا ہی بات ہو گئی نا کہ ایک آنسر ہے بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور باقی تو ہو ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ تو میں نے آپ کو خود بتا دیا پھر آنسر. تو کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو ملٹیپل چوائس میں یہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ نوٹ کریں تو مجھے لکھنا زیادہ پڑتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو ٹائپنگ کرتی ہیں وہ بےچاری جتنا لمبا لکھتی ہیں, آپ لوگوں کو تو صرف ایک کلک دبانا ہوتا ہے, صرف کوشچن کو پڑھنا ہے. آپ کو تو رائٹنگ کچھ کرنی ہی نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں سے لمبے لمبے سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی تفسیریں آپ کو کرنے کو کہی جا رہی ہیں جس میں تین چار پانچ لائنیں لکھنی ہوں یا کوئی اسائنمنٹ میں جیسے ہوتا ہے, اس طرح سے تو کچھ بھی نہیں تھا آپ لوگوں کا. تو مطلب یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کہ کتنا آپ نے کوشچن کو صحیح سے سمجھا ہے. لیکن اب اس کے اندر بھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ صحیح سے بعض دفعہ شاید جلد بازی کرتے ہیں, نہیں صحیح سے سمجھتے, اور اس میں آپ کی غلطی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آج ہم ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کو دیکھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ و تعالی ہم آگے چلیں گے تاکہ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے. سس سبوئی اگر یہاں پہ ہیں تو ایک دفعہ مجھے دوبارہ ای میل میں پلیز ریزلٹس بھیج دیں انشاءاللہ.
تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. آپ لوگ یہاں پہ پیڈ پر سے لکھیں کون سے ایسے سے جواب صحیح ہے. جو گھوڑا پالتے ہیں کپڑا دکھاوے کے لیے وہ زیادہ خسارے میں ہوں گے, اور یا جس کے جانور ان کو روندیں گے. ہمیں جس کو جس نے پریپیئر کیا ہوگا اس کو یہ پتا ہوگا کہ جانور کس کے روندیں گے, جس نے جانور کی زکا دے دی ہوگی, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے. میں نے یہ اس کو ریویو میں بھی بار بار کیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا, بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کس سے یہ سوال پوچھا تھا اور اس نے کیا جواب دیا. ٹھیک ہے, تو ایک دن دو دن پہلے یہ ریویو ہوا تھا. تو ہمیں پتا ہے کہ جو زیادہ مال جمع کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ فکارے میں ہوں گے. جو کوڑا پالتے ہیں ذرا گھوڑے پالنے والا فکر اور دکھاوے کے لیے وہ تو نہیں, تو وہ اس کے لیے ببال ہوگا. یہ ہم نے پڑھا تھا, پر یہ تو نہیں تھا کہ وہ سب سے زیادہ خساری میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا تو ماں سمپل ہے کہ لوگ بے انتہا غربت میں شکار ہو جائیں گے جو بھوکے مریں گے, یا لوگ بے انتہا مالدار ہو جائیں گے کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. تو ان میں سے کون سا مالدار؟ جی مالدار ہو جائیں گے لوگ, ये भी एक बात हुई थी, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ये बात की थी कि देखिए वो एक एक आदमी को इतनी औरतों को संभालेगा और ये सब उसके अंदर आया था कि मालदार भी लोग हो जाएंगे और सदका नहीं लेने वाला कोई होगा। ये भी हमने रिव्यू में अच्छी तरह से किया था। नंबर फोर, औरत अपने खाविंद की इजाजत के बगैर सदका करे तो अजर मिलेगा खाविंद को, औरत को या दोनों को? अच्छा, इसके अंदर बाद लोगों ने कंफ्यूजन किए और मुझे ये भी पता चला कि शायद रिव्यू वगैरह में भी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहे थे, इसलिए इस सवाल का मुझे जवाब अब तो आपको आता ही होगा, तो लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं। दोनों को, ठीक है, दोनों को। और मुझे ये बताइए कि शायद कुछ लोगों ने समझा कि औरत को मिलेगा और खामिद को नहीं मिलेगा, ये गलती की आप लोगों ने कि औरत को आधा मिलेगा और खामिद को मिलेगा ही नहीं। तो भाई खामिद की तो कमाई से है, खामिद को तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे औरत ने इजाजत ली या नहीं ली, ठीक है, खामिद को तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसका पैसा है। ये बात को अच्छी तरह समझिए, उसके पैसे हैं तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। औरत को अलबत्ता अगर वो इजाजत से कर रही है तो फिर यही मिलेगा, अगर वो इजाजत से नहीं कर रही तो फिर आधा मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। वहाँ उसकी अर्निंग है तो उसको मिलना ही मिलना है, तो आप उसके पूछे बगैर भी दे रही है तो माशाल्लाह वो तो फायदे नहीं, क्योंकि कमाई उसकी है ना। इसमें किसी को कंफ्यूजन थी, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? मेरे ख्याल उनको कंफ्यूजन हो जाएगी। अगला देखें क्वेश्चन, तो मुझे बताइए किसमें कंफ्यूजन हुई आपको। नंबर फाइव, सबसे ज्यादा सवाल उस सदके का है कि जब तुम खुद फकीर हो फिर भी दो, या जब तुम खुद बीमार हो तब भी दो, या जब तुम सेहतमंद हो और बुखल के बावजूद दो। इसमें कंफ्यूजन थी किसी को? थर्ड वन, क्योंकि अगर आपको पता हो तो मैं एक दिन पहले के रिव्यू के अंदर, यानी एक दिन पहले से मतलब जो पिछली क्लास हुई थी उसी रिव्यू में मैंने सिस्टर एगम से ये सवाल पूछा था, ठीक है। और आपको पता होगा कि मैंने उस वक्त बहुत अच्छी तरह बताया था कि भाई बीमार जब होता है इंसान तब तो वो देता ही देता है, जब आप सेहतमंद भी है, आपकी ख्वाहिशात है, मोर खुले हुए हैं, सेल लगी हुई है, आपको पता भी है कहीं से पता नहीं आता है या नहीं आता, आपका दिल चाहता है मैं वहाँ खर्च करूँ वहाँ खर्च करूँ, बहुत सारी जगह खर्च करने के लिए, उस वक्त जो देता है तो वो एक जाहिरी बात है उसका अजर ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है, जब आप कहेंगे कि क्लियर है तो सही में आने चलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों ने सही किया, बहुत सारे लोगों ने हाँ सही किया, तो कम लोगों ने इसको गलत किया। अच्छा जी, अगला देखिए, ये तो मेरे ख्याल हर जगह पे मैं ये बात करती रहती हूँ, जो भी मेरे लेक्चर सुनते हैं उनको तो शायद याद ही हो गया होगा कि जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसके लिए क्या देता है, उसको पैसे देता है, औलाद नेक कर देता है, क्या देता है, दीन की समझ आता करने पर, राइट। तो ये सबने भी माशाल्लाह, सबने माशाल्लाह ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल, बुरे इंसान के दिल में दो चीजें बढ़ती रहती है, अगर आखिरत का खौफ और मौत का ख्याल बढ़ता रहे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया की मोहब्बत और ज्यादा जीने का शौक, क्या ये बढ़ता है या जिंदगी की उम्मीद हो जाती है उस पर मौत का खौफ हो जाता है, क्या है इसके मतलब? कुछ लोगों ने लिखा है आखिरत का खौफ और मौत का ख्याल, अल्लाह करता है ऐसे होता, अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर आज सारे लोग बहुत ही अपनी आफरत बना रहे होते, बिल्कुल दुनिया की मोहब्बत और जीने का शौक तो और बढ़ जाता है उनके दिल में, ठीक है। नंबर एक, जो जकात का हकदार ना हो फिर भी जकात ले ले, तो इसका भी साफ तौर पे इसमें है कि उसके लिए वो माल जो है उसके खिलाफ गवाही देगा, जो दो फरिश्ते उसके बदला सकते हैं, आपको पता है किसके लिए, हशर के मैदान में जानवर जिसको पैरों को ले रहे होंगे, ये भी आपको पता है। अच्छा जी, नंबर नाइन, कोई कौम जकात या सदका लेकर आसलम के पास आती तो आसलम क्या करते थे? अब तो मैं तफसीर में भी ये देखी है, क्या करते थे? अल्लाह तला ने तो करने के लिए खैर बरकत की दुआ देते थे, ठीक है, दुआ देते पेशावर। ये भी काफी लोगों ने सही किया, सिर्फ एक आदमी गलत किया कि शाबा से फरमाते कि मैं वसूल करूँ, तो कोई कॉमन सी बात है जाहिर है, लेकिन दुआ देने की बात एक खास बात है, जो डिफरेंस है। नंबर 10 सदका फितर में ये खजूर जौ अनाज इंजीर में जो चीज महंगी हो उसका सहारा देना, सस्ती हो उसका सहारा देना, या कोई भी एक चीज का दे सकते हैं, एनी का राइट शाबा। यानी इसका मतलब ये, इसी वजह से तो हम हर मस्जिद में देखते हैं कहीं 8 डॉलर लिखा होता है, कहीं 10 डॉलर लिखा होता है, कहीं 12 डॉलर लिखा होता है, इसलिए कि हर एक किसी इनमें से चीज का देख के एक साथ अंदाजा लगाते हैं, इस वजह से डिफरेंट होते हैं। जो सवाल आता है ना हर एक सप्ताह के तरफ कि क्यों भी वो डिफरेंट होते हैं, वो मस्जिद वाले तो 8 डॉलर कह रहे हैं, आप 10 डॉलर क्यों ले रहे हैं, या आप 15 डॉलर क्यों कह रहे हैं, तो उसकी वजह ये होती है, समझे। अच्छा अगला तो एक साथ बराबर है, ये मेरे ख्याल सबका ही सही हुआ होगा, सिवाय जिसमें नहीं हो कोई याद किया तो जिसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं थी। फिर जो हमेशा लोगों के आगे हाथ फैलाता रहता है सियामत के लिए क्या होगा, माल उसके पपा से लगाया जाएगा, वो तो उसको लगाया जाएगा जिसने जकात नहीं दी, उसकी उसके माल को उसके पीठ पर लाद दिया जाएगा, या इसके चेहरे पर जरा भी दोष नहीं होगा। ये मेरा ख्याल सबका ही सही है माशाल्लाह। लिख दिया कि माल को अपनी पीठ पे उठा के लाए, अच्छा इसका अंतर सबका सही नहीं है, एक दो गलत थी, ठीक है। अच्छा तो ये भी सिंपल सिंपल था। अब यस नो पे आ गए, मुसलमान घराने में बच्चे बूढ़े मर्द या औरत गरीब अमीर सब पर जकाते फितर अदा करना जरूरी है, अच्छा जी। नंबर 2 हीरे मोती की कीमत लगाकर इन पर जकात देना जरूरी है, ये हमने बात की थी कि हीरे मोती के ऊपर कोई जकात नहीं होती, फिर भी किसी ने यस लिख दिया है, ये मुझे पता नहीं कि किसने लिखा है, कितने तरफ आंसर देख रहे, क्योंकि मैंने बताया था कि हीरे मोती के ऊपर इन पत्थरों के ऊपर इसीलिए स्टोन निकाल के की कीमत के ऊपर देते हैं, अगर स्टोन के साथ भी आप देते तो कोई हरकत नहीं है, ये तो अच्छा ज्यादा ही चली जाएगी। नंबर 3 कोई किसी दूसरे की तरफ से उसकी जकात दे सकता है, इसमें क्या कंफ्यूजन है, इसमें तो बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत लिखा है। जब मैंने आपको हजरत अब्बास अली मिसाल बताई भी थी कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने नई दी हुई थी, काफी वसलम ने फरमाया कि मैं उनकी जगह पे जकात दे दूंगा, तो ये तो बात क्लियर हो गई थी ना। अच्छा नंबर 4 अगर कोई जिंदा ये वाला अगर कोई जिंदा अपनी मैयत के लिए सदका करे तो इसे सवाब इसका सवाब मैयत को पहुंचता है। और मुझे बताएं कि ये इसमें कोई कंफ्यूजन थी, याद रखी औलाद सदका करती है तो क्या होता है, नहीं पहुंचता उसे, औलाद सदका करती है तो क्या होता है, पहुंचता है, यस पहुंचता है। हमने वो पढ़ा नहीं था कि वो आदमी ने कहा कि मैं अपनी माँ के लिए सदका करना चाहता हूँ, और वो जिंदा होती तो सदका करती जाए, तो जब औलाद करती है, और मैंने उसमें खास तौर पे जब किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या औलाद के लिए या कोई भी, तो मैंने कहा था कि कोई भी चाहे औलाद चाहे कुछ, इसका मतलब है जो औलाद के लिए इसमें हुक्म है वो ही दूसरों के लिए भी, वही वाला हुक्म दूसरों के लिए भी लगता है, यानी कोई भी सदका कर लो, मैं अपनी किसी पुत्ती के लिए करूँ, खाला के लिए करूँ, किसी दोस्त के लिए करूँ, किसी के लिए भी करूँ, तो उसका सवाब उसको भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये माली इबादत है, बदनी इबादत नहीं आप कर सकते, किसी की नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, आप किसी की जगह ये नहीं कर सकते, मगर जो माली इबादत है ये कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप ना सदका दे सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि कई लोगों ने नहीं लिखा है, तो मैयत की सदका, हाँ मैयत की सदके के ऊपर बहुत सारी लोग मेरे ख्याल में कंफ्यूज थे, मिले जुले आए, मगर ज्यादातर ने सही किया माशाल्लाह। तो ये समझ आ गई आपको, मैंने बदनी इबादत में हज उमरा सिर्फ बदनी इबादत नहीं, क्या आपका माल नहीं लगता हज उमरे में, क्या आपका माल नहीं लगता, ये बोट किसी वजह से उलमा का इसके अंदर होता है कि नहीं ठीक है वो कर सकते हैं, अगर बात कहते कर सकते हैं, बात कहते नहीं कर सकते, जो बदन का इसी वजह से आ जाता है। रोजे का इसलिए आता है कि रोजे का एक स्पेसिफिक हुक्म है, स्पेसिफिक हुक्म है, तो जो उससे रह गए हो रोजे पर जरूर रह गए हो तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है, फर्ज रोजा जी। चुपता जारिया से आपने क्यों कंफ्यूज किया? उसका जारिया तो और अलग चीज है, पर ये वैसे सदका निकालना, अब इसको आप याद रखिएगा। नंबर 5, सदका सिर्फ वो कहलाता है जब माल अल्लाह के रास्ते में दिया जाए। अल्लाह के बंदे, मैंने कितनी सारी आपको चीजें बताई थी कि ये भी एक सदका है, ये भी सदका है, ये भी सदका है, मुस्कुराना भी सदका है, किसी का सामान उठाना भी सदका है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि दूसरों को खाना खिलाना भी सदका है। फिर हमने खाना खिलाने भी कितनी बातें की थी। तो सिर्फ वो तो नहीं सदका। अब हम जब हदीस पढ़ेंगे आई एक लेमैन के लिए, हाँ आप क्या सकते हैं, वो ये सोचेगा कि सदका सिर्फ वो था जो माल अल्लाह के रास्ते में दिया जाए। लेकिन जब आप हदीस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने तो पढ़ लिया कि ये सारी चीजें सदका है। आपको तो नहीं ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह लेना चाहिए। नंबर 6, अच्छा ये भी मैं देख सकती हूँ तो किसी ने कलेक्ट किया या नहीं। ये भी माल अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, ये बहुत सारे लोगों ने, नहीं कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको गलत किया, लेकिन काफी सारे लोगों ने गलत किया है। इसके पर मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि सदका क्या क्या चीज है। अच्छा अगला क्वेश्चन है नंबर 3, क़यामत के दिन हर फर्द के लिए एक फरिश्ता होगा जो अल्लाह और बंदे के दरमियान तर्जुमानी करेगा। ये क्या है, ये सही है कि गलत है? आपने कुछ नहीं लिखा रही है, जबकि हमने हदीस में क्लियरली पढ़ा था कि बंदे और रब के दरमियान कोई भी नहीं होगा, नोबडी, वहाँ पे कोई वकील नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई फरिश्ता बीच में नहीं खड़ा होगा, कोई रसूल नहीं खड़ा होगा। आपको अल्लाह ताला से डायरेक्टली खुद बात करनी होगी। आपने क्यों रॉन्ग कर दिया था? तो अगला की बहुत सिंपल और बहुत ही आसान था। अच्छा अब अगला देखिए, सदका बहुत तहकीक करके देना चाहिए। सदका बहुत तहकीक करके देना चाहिए, ये नहीं हुआ था ना, ये आया ही नहीं था। अगर इंसान के पास एक वादी सोने की है, उसका पेट तभी भरेगा दूसरी वादी उसको दे दी जाए, ऐसे ही पेट भरेगा दूसरी वादी देने। क्या पढ़ा था हमने अलहाकुम तकासुर में, हत्ता जुरतुम अल-मकाबिर, तुम्हारी अवैध तो खत्म नहीं होगी जब तक कब्रों तक नहीं पहुंच जाते। तो आप कैसे थे, तुम दूसरी वादी दे दी तो फिर पेट भर जाएगा। हाँ कब्र की मट्टी उसका पेट भरेगी, दो वादियां भी सोने की मिल जाए, यही तो हदीस है, तब भी नहीं उसका पेट भरेगा। फिर भी आपने उसको गलत किया है और बहुत सारे लोगों ने किया है, ये कहा कि हाँ भर जाएगा पेट। देखिए कितने सारे लोगों ने किया है, 5, 6, 7, 9 लोगों ने इसको गलत कर दी। ये बहुत वाजे हदीस है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन की क्या बात है। तो आप लोग कहते हैं ना कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, मुझे बताएं इसमें क्या कंफ्यूजन की बात है। ये तो जिसने हदीस नहीं है पढ़ी है, सूरह तकासुर ही पढ़ी होगी ना, तो उसको भी आता है। और बारहा ये वाली हदीस कोट की गई है क्लास में, तफसीर की क्लास में। फिर आप देखे मोमिन और मुसलमान में फर्क है, जरूरी नहीं कि मुसलमान हो वो मोमिन भी, क्या ख्याल है? यही वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे, यही वाला जो, हाँ तो मोमिन और मुसलमान में क्या फर्क है ये बताओ। हमने बल्कि तफसीर में भी ये पढ़ा है, कुरान की तफसीर में। असल में मेरे पास अभी फोन नहीं है ना, मेरे हाथ में नहीं है। कुरान की तफसीर में भी हमने क्या पढ़ा, मुनाफिकीन का जब आता है तो वो मुसलमान तो कहलाते थे लेकिन मोमिन नहीं कहलाते। मुसलमान हर एक वो बंदा कहलाएगा जो कलमा पढ़ने वाला हो, जिस दिन किसी ने कलमा पढ़ लिया ना तो वो मुसलमान हो गए, राइट। लेकिन क्या मोमिन जो है ना, यानी किसी के दिल में ईमान होना, वो तो आप जान ही नहीं सकते कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। मुसलमान के आगे दोनों कैटेगरीज है, एक है मोमिन और एक है मुनाफिक। आप कह ही नहीं सकते कि किसी के दिल में ईमान है। इसी तरह आगे जाके आपने तो जाहिर माशाल्लाह पढ़ा भाई पेन के पारों में, अपने सूरत भूल गई है। अल्लाह ताला ने बदुओं से कहा कि तुम मुसलमान तो हो लेकिन अभी ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं दाखिल हुआ, مسلمان تو ہو گئے ہو, ایمان نہیں تمہارے دلوں میں داخل ہوئے. یعنی مومن ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے اور مسلمان ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے. جزاک اللہ بولے شرح گجرات میں. اچھا میں نے پوچھا ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق ہے, ضروری نہیں ہے جو مسلمان ہو وہ مومن بھی ہو. کیا یہ بات صحیح ہے کہ ضروری نہیں ہے جو مسلمان ہو وہ مومن بھی ہو؟ ہم سارے مسلمان ہیں لیکن ہم میں سے کون مومن ہے اور کون نہیں ہے یہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, یا ہم اپنے دل کو جو جانتے ہیں ہمیں پتا ہو کہ ہمارے اندر کیا منافقت ہے کیا, وہ اللہ صرف جانتے ہیں. لیکن اسلام کا سرٹیفکیٹ آپ کو فوراً دے دیں گے, آپ مسلم ہیں یا نہیں یہ سرٹیفکیٹ آپ کو فوراً مل جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان. اچھا اس سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان, یعنی ہر مسلمان ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو. یہ تو صحیح بات ہے, اس طرح یہ تھا صحیح. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ابھی اگر کوئی لائن کھول سکتا ہے ان کی میں دوبارہ کال کروں, اگر نہیں سمجھ آئی تو میں کال کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ یعنی ضروری نہیں ہے وہ مسلمان بھی ہو جو وہ مومن بھی ہو جو مسلمان ہے. یعنی مسلمان تو ہم سب ہیں, سب مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. اور منافقین, اب آپ پڑھ رہے ہیں نا سورہ توبہ میں منافقین کا پڑھا, انہوں نے بھی تو کلمہ پڑھا ہوا تھا, لیکن کیا وہ مومن تھے؟ مسلمان تو کہلاتے تھے, کوئی وہاں پہ سوسائٹی میں کافر تو نہیں کہتا. کیا وہ مومن تھے؟ نہیں. ہم بار بار اس میں کہتے ہیں کہ مومن جو سچے مومن تھے وہ اس طرح تھے اور جو منافق تھے وہ مسلمان. اور یہ غلط ہے بات کہ مسلمان اور مومن میں فرق ہے, ضروری نہیں کہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی. کیسے ہیں جی سر آپ رام مومن والے بھی جو ہم اسے نکال لیے جائیں گے, مگر ضروری نہیں کہ کسی کے اندر ذرے برابر ایمان بھی ہو. یہ نہیں سمجھ آئے؟ کوئی اگر ان کو سمجھا دے گا ورنہ پھر مجھے لائن دوبارہ کرنی پڑے گی. اچھا ایسے کافر کو زکات دینا جائے گا جس کو اسلام کے قریب لانا مقصد ہے, خراب و مالداری کی ہو. ہاں بہت ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی, بہت اکول نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں اس کو زکا دی جا سکتی, یعنی ایک طرح سے کافر کو زکا دی جا سکتی, باقیوں کو تو دی نہیں جا سکتی. اچھا جی آگے, بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب پر زکات لینا حرام ہے, صحیح ہے یہ بات؟ اچھا کسی کو زکات میں جو چیز ملے ہو اگر آپ کو تحفے میں دے تو آپ کے لیے لینا جائز ہے, آپ کے لیے لینا جائز ہے. وہ تو زکات کی چیز ہے, مثلا میری میں نے آپ کو ایگزامپل بھی روز قدر بھی دی تھی کہ اگر میری مثلا میں میڈ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھئی مجھے باقی اسلام گھر سے والوں نے زکات میں یہ مثلا کچھ کھانے کی چیز دی ہے آپ بھی لیں, اگر وہ مجھے دیتی ہے تو میں کھا سکتی ہوں؟ وہ کھا سکتی ہوں, کیونکہ وہ اب مجھے جو دے رہی ہے وہ ہدیہ دے رہی ہے, اب وہ میرے لیے زکات نہیں. رائٹ ٹھیک ہے, الحمد للہ یہ بات بھی آپ لوگوں کو الحمد للہ سمجھ آ رہی, مگر بعض لوگوں نے ان کوشچن کو بھی اس کو بھی مطلب صحیح ان کا نہیں ہے, اس لیے تو سب نے الحمد للہ صحیح زیادہ. یہ بھی کس نے دیکھے آپ کہہ دیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب پر زکات دینا حرام ہے تو نے کہا نو, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سید جو ہوتے ہیں وہ زکات نہیں لیتے, پھر آپ نے نو کیسے لکھا جس نے بھی یہ لکھا ہے؟ یعنی کئی مسٹیکس جو ہے نا وہ ایسی, یعنی وہ سلی مسٹیکس ہیں, وہ سلی مسٹیکس ہیں, اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں. آپ تھوڑی سی کیونکہ آلویز ریمبر کہ جب آپ ملٹیپل چوائس کی کوشچن کریں گے تو وہ تھوڑے سے ٹرکی ہوں گے ضرور, اس لیے کہ اگر وہ ٹرکی نہیں ہوں گے تو جواب تو میں نے خود ہی لکھے ہوئے, آپ نے تو بس اس میں سے جواب ڈھونڈنا کہ ان میں سے تین ون آؤٹ آف تھری کون سا ہے, ون آف دیم از رائٹ. تو اب وہ میں اتنا آبویس نہیں کر سکتی کہ آپ لوگوں کو بالکل ایسے دکھا دوں کہ بالکل بچوں والا وہ بن جائے کہ آپ کو آپ بھی سمجھ آ جائے. تو अब आपको थोड़ी सी वो होगी, इसी तरह सीरा टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। मैं नहीं चाहती कि आपने कोई सिली मिस्टेक करें प्लीज उसमें, क्योंकि तो बाद में जब आप कहते हैं ना कि हमें आता था तो हमने क्यों गलत कर दी, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। एक होता नहीं आता जब आप सीख रहे, एक है कि आपने यानी ऐसी मिस्टेक की आपको आता भी और आपने उसको सही नहीं समझा, ये तो और भी खतरनाक बात हो गई ना। तो समझ ही नहीं आ रही आपको कि क्या क्वेश्चन है और उसमें जो लिखे हैं उनमें से तीन में से कौन सा चूज करना, या शायद बहुत जल्दबाजी में करते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहुत आसान है। तो नहीं दे सकते, मैंने कहा लेना हराम है, देने की तो बात ही नहीं, लेना उनके लिए हराम है, वो नहीं ले सकते जकात। तो इसका मतलब कोई हमसे कोई बात करे अगर पूछे, मैं आपसे कोई आगे पूछे कि बनू हाशिम के जकात लेना हराम है, तो आपको अगर बात ही ना समझ आएगी तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब हमारी समझ के अंदर कमी है, इज इट मोर सीरियस? हम गिफ्ट करने की तो बात ही नहीं आई, तो आपने कहे कि वो ले सकते हैं या नहीं। हाँ हम उनको गिफ्ट कर सकते हैं ये नहीं, ये एक तो उलट क्वेश्चन होता है ना, वो ले सकते हैं या नहीं। हम हमें सबको पता है सैयद जकात नहीं ले सकते, कि जिसने हदीस की किताब भी ना पढ़ी होगी वो भी बता दे। दीदी हमारा क्वेश्चन याद नहीं दे, जो सैयद सही नहीं, ये एक्सेप्टेबल मिस्टेक नहीं है। चलिए जी आप किताबें हज पे आए, अब आप यहाँ पे ही बता दिया जिसे मेरे पास सकते हैं नहीं, और टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया। अच्छा अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई है फिर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसी भी मिस्टेक हुई जिसमें आपको क्वेश्चन ही ना समझ आए। तो आपको अगर क्लोज वन है तो आपको आए ही, इसका मतलब क्लोज वन जिनको नहीं आ रहा ना कि ये इससे क्लोज था, इनमें क्या क्लोज है मुझे सिर्फ इतना बताएं। किसी को सिर्फ जानवर बांध रहा है पैरों तले, और किसी के लिए फरिश्ते दो बद्दुआ कर रहे हैं सुबह सुबह, और एक माल है जो उसके खिलाफ दवाई देगा, इसमें कौन सा है जो क्लोज है? मैंने कुछ गलत गलत बातें लिखनी थी ना दूसरी भी, ये तो नहीं कर देना था कि जो जकात का हदल ना फिर भी जकात ले जाए तो वो उसके लिए जायज है, ऐसा तो नहीं मैं लिख सकती थी, वो तो बहुत ऑब्वियस होता है। तो ये तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अब इसी तरह जिसको आखिरत का खौफ हो जाता है, मौत का ख्याल हो जाता है बुढ़ापे में, तो हम सबको पता कि ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसको भी गलत किया। तो इसलिए थोड़ा सा इसको इस तरह दिखा करें, जरा थोड़ा सा जहन पे वो करके और फिर फोकस करके उसको करें, आप दोबारा एक दफा देख लें। अगर आपको लगता है कि टाइम थोड़ा कम है, इंशाल्लाह आपको टाइम भी दे दूंगी, वरना वैसे ही 15 मिनट यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स मिले, तो 30 सेकंड बहुत इनाफ है एक क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आपको वाकई अच्छी तरह आता है, अगर वाकई अच्छी तरह आता है। अगर अच्छी तरह नहीं आता और सोचना है कहीं अगर टिके लगाने हैं तो फिर तो जाहिर ही बात है कि थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ओके अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको आता है और आपने अपनी तरफ से सही किया लेकिन वो गलत हो गया कोई मसला नहीं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो नंबर ही आपको पता होगा, लेकिन कोई इतनी नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आई वो क्लोज वन से हमें समझ ही नहीं, तो वो बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, कोई आपसे सोचेगा कि ये हदीस पढ़ते हैं और वो आपसे पूछे और आप समझ ही नहीं आ रही लोगों के क्वेश्चन की, तो आप क्या किसी को सही गाइड कर सकते हैं? तो आप अल्लाह ना करें किसी को कुछ गलत ही बता देंगे और कहेंगे मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आता। देखो ना ये यही था ना क्वेश्चन, तो हाँ आपके लिए रीडिंग का वो सही बात है। तो लेकिन सीरत का जो पेपर है मैं आपको अभी से बता दूं, इट्स नॉट इजी लाइक जकात का एग्जाम। जिसने नहीं पढ़ा होगा सीरत की बुक को उसको कल बहुत मुश्किल होगा, उसको नहीं आएगा। अच्छा चलिए इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दूंगी। ठीक है, हाँ मैं पेपर इसलिए कि मैंने किसी एक को ये बात बताई है तो मैं इंसाफ करना चाहती हूँ कि सबको ये बात बताऊंगी चाहिए। तो एक को पता है ना कि मैंने किसको ये बात बताई है कि वो हदीस के पेपर जैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं हो कि जो लोग मेरे साथ नहीं है वो उनको नहीं पता चले और कोई एक को पता हो तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादा मेहनत के साथ आए,